किस्सा कहानी बाय निधि बासु पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। ये स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आई हूँ मैं निधि बासु। इस पॉडकास्ट में सुनिए अपनी पसंदीदा हिंदी कहानियाँ केवल स्पॉटिफाई पर। मेरा पॉडकास्ट किस्सा कहानी बाय निधि बासु फॉलो करें और फॉलो के बगल में बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी हर नई कहानी आपको सबसे पहले सुनने को मिल जाए। वॉइस ओवर्स के अपने लंबे करियर में मैंने जो प्रोजेक्ट्स किए, उनमें से मेरे लिए एक बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट रहा है, उड़ीसा के ट्राइबल म्यूजियम का। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट? वेल, इस एक प्रोजेक्ट ने मुझे अपने ही देश की जनजातियों, इन 60 से भी अधिक ट्राइब्स के बारे में जानने का एक अवसर दिया जो अन्यथा मिलना मुश्किल था। घने जंगलों में रहने वाली इन ट्राइब्स का रहन सहन, वेशभूषा, खान पान भले ही सादा हो, पर इनका जीवन आजकल के दौर की बनावटी तड़क भड़क से बिल्कुल दूर आडंबरहीन होता है। प्रकृति की छांव में गुजर बसर करते हैं और प्रकृति की पूजा भी करते हैं। दे आर रियली क्लोज टू नेचर एंड नो बेटर देन मोस्ट ऑफ अस हाउ टू कंजर्व द बाउंटीज ऑफ नेचर। वरना जिन क्षेत्रों में ये जनजातियां रामायण काल से चली आ रही हैं, वे अब तक रेगिस्तान में परिवर्तित न हो चुके होते। थिंक अबाउट इट, इन ट्राइब्स के नियम भी इन्हीं की तरह बहुत सादे होते हैं। मसलन औरतों और मर्दों के लिए समाज के नियम बराबर होते हैं, जैसा कि आप इस कहानी में सुनेंगे। और कुछ नियम भी होते हैं विच आर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। फॉर एग्जाम्पल, बड़े होते ही लड़के लड़कियां या धांगड़ा धांगड़ी गांव में बने अलग अलग हॉस्टल्स में रहते हैं और हर गांव की अपनी पंचायत और कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। आपको सच बताऊं, ये कहानी पढ़ के मैं खुशी से उछल पड़ी, क्योंकि मुझे लगा मैं आपके लिए एक ऐसी प्रस्तुति ला सकती हूँ जिसमें निजी और सामाजिक जीवन का एक अलग पहलू दिखता है। एक ऐसी कहानी जो कहीं और मिलना मुश्किल है। इस कहानी का नाम है प्रंजू, जिसे उड़िया में लिखा कान्हू चरण मोहंती जी ने। ये एक ऐसे लेखक रहे जिनकी रचनाओं पर सर्वाधिक उड़िया फिल्में बनी। कहानी सुनने पर आप समझ जाएंगे क्यों। एक बार फिर इस अद्भुत कहानी का इतना सुगढ़ हिंदी अनुवाद किया प्रोफेसर कपिलेश्वर प्रसाद जी ने। वाचन है मेरा यानी निधि बासु का। प्रंजू एक जुर्माना होता है जो एक पति शादी से पहले के पत्नी के प्रेमियों से वसूल करता है। तो सुनते हैं इस अंधेरी रात में सरबू कंद अपनी पत्नी मूली कंद से क्या कह रहा है। सरबू कंद ने मूली कंद का हाथ पकड़ते हुए कहा, कह दे मूली, कितना आनंद आएगा। कल सवेरे उस धांगड़े से प्रंजू अदाय करेंगे, गांव वाले भोज खाएंगे, खुश होंगे, मर्द भी पहचाना जाएगा। कहो ना मूली। मूली ने सर झुकाया, कहे या ना कहे सोचने लगी। बालीगुड़ा तालुक के घनघोर जंगल के सघन वन में एक छोटा सा कंद गांव, नाम सेरनगुड़ा। गांव के चारों ओर लहरों के समान दूर दूर तक फैली हुई पर्वत श्रृंखला, पहाड़ के ऊपर घोर जंगल। पहाड़ के ढालुए से जंगल काटकर गांव तक फसल लगाई गई है। सरबूकंद का घर गांव के बीच में, धांगड़ी घर या कुमारी कंध युवती गृह 10 हाथ दूर। ठीक सरबू के घर के पीछे बड़ा सा बाड़ा। बाड़े में उसने कई तरह की फसलें लगाई हैं, मक्का, खीरा, झींगा, कदीमा। बाड़े से लगकर उसका लंबा सा खेत, एक टुकड़े में सामा, दूसरे में सरुआ, नीचे के दो टुकड़ों में धान। धान 60 दिनों में पक जाता। पीछे पहाड़ी ढालुए में बाजरा और ऊंची जमीन में राहर। पहाड़ तले छोटा सा झरना, झरने के ऊपर की भूमि में तीसी। पास के टेढ़े मेढ़े टुकड़े में न जाने कितने पौधे। सरबू के परिवार में सब हैं, माँ बाप, छोटा भाई, छोटी बहन। बाप बूढ़ा हुआ काम नहीं कर पाता, शराब पीकर कमरे में पड़ा रहता है। बूढ़ी माँ उसी कमरे में सोती है। छोटा भाई सैतू कंद गांव के लड़कों के साथ दूसरे गांव में कुमारी कंधुनी को नचाने गया है। सेरनगुड़ा से रिकाबाड़ी आधी मील दूर है। उस गांव की लड़कियों के साथ इस गांव के लड़के नाचेंगे, गीत गाएंगे। आज की रात इसी तरह कटेगी। सैतु भी जवान हुआ, उसे भी तो एक धांगड़ी चाहिए। सरबू की छोटी बहन पार्वती, वो भी सयानी हुई, एक साल से रात में घर में न सोकर धांगड़ी घर में सोने लगी है। कई बार दूसरे गांव के लड़कों के साथ नाच चुकी है, वर अभी नहीं चुन पाई है। जिसके साथ विवाह करने का उसका मन होगा वही विवाह करेगी। जो धांगड़ा राजी होगा और रुपए पैसे देने को तैयार होगा, पार्वती उसी से विवाह करेगी। इन दिनों सरबू और किसी की चिंता नहीं करता। 15 दिन पहले उसका विवाह हुआ है। मुली को धांगड़ी बनाकर रिकाबाड़ी से लाया। मुली 17 वर्ष की जवान लड़की, सांवली भरी पूरी देह, गोल मुंह पर गुदना, सरबू की आंखों में अत्यंत सुंदर दिखती। कितनी लड़कियों ने उसकी पत्नी बनने की आशा बांधी थी, पर उसने इसी मुली को पसंद किया। मुली रिष्ट पुष्ट, आलसी नहीं, कर्मठ है। सरबू 20 साल का जवान, सांवला, मजबूत हाथ पैर। मुली ने भी अंत में उसे ही चुना। कई गांव के लड़कों ने उसे नचाया, उसका हाथ पकड़ अपनी ओर खींचा, फिर भी सरबू के समान उसकी आंखों में और कोई नहीं जचा। 15 दिन हुए वो सरबू के घर आई है। सरबू उसे प्राण से बढ़कर मानता, आने के दिन से पूछता है, कहो न मुली। वो कैसे कहे? जिन लोगों के साथ वो नाच चुकी थी, जो लोग आधी रात चांद की रोशनी में उसका हाथ पकड़ जंगल के बीच एकांत जगह पर ले गए थे, वे लोग भी तो उससे विवाह करने को राजी थे। उन लोगों का क्या दोष? क्यों कर वो उन लोगों के नाम सरबू के आगे कहे, उन लोगों से प्रंजू या जुर्माना वसूल कराए? पर बिना कहे सरबू नहीं छोड़ेगा, उसने जिद पकड़ ली है। सोचा, क्या झूठ मूठ कह दे कि तुम्हारे सिवा किसी और के साथ आधी रात में किसी निर्जन जगह में नहीं गई। उसकी देह कांप उठी। झूठ कैसे कहे? ऐसी ही चांदनी रात में चांद ऊपर से नीचे खिसक रहा था। बादलों ने पहाड़ की चोटी पर रुपहला चंदोबा डाल दिया था। रात इसी तरह साय साय कर रही थी। कारिंगा गांव का बादला कंद। नाच खत्म होते होते सभी थक कर चूर हो गए। उस समय बादला कंद उसका हाथ पकड़ चट्टान के पास के महुए के पेड़ के तले ले गया था। दूर से बाघ के गरजने की आवाज आ रही थी। चांद ने देखा, बादल ने देखा, पहाड़, पेड़, चट्टान, सभी ने देखा। बादला ने उसके कान में कहा, सुन री मुली, तुझे मैं धांगड़ी बनाऊंगा, उपहार दूंगा। उसे विश्वास था, वो राजी था। उसका बाप राजी ना हुआ, नहीं तो वो बादला कंद की धांगड़ी बनी होती। सरबू ने मुली का हाथ पकड़कर हिलाया, प्यार से कहा, कहो मुली, चुप क्यों हो? बादला कंद, करिंगा गांव का? और कौन मुली? मुली फिर से विचारने लगी। अंधेरी रात, नाच गान जिस समय खत्म हुआ, चैत का महीना, पहाड़ में आग लगी थी, कोलाहल मचा था। सायका गांव के धांगड़े लकड़ी जलाकर उसकी आग से उत्पन्न रोशनी में रिकाबाड़ी की धांगड़ियों को नचा रही हैं। आधी रात, अंधेरा, शराब पीकर सभी बेहोश, आंखों में नींद, देह थकी थकी सी, थक कर सभी वहीं आसपास के पेड़ तले लेट रहे। सवेरा हुआ, मुली की नींद टूटी। उसने आंखें खोलकर देखा, उसके पास विरजा कंद सोया हुआ है। अपने देह पे से उसका हाथ हटाकर अत्यंत क्रोध में बड़ी बड़ी आंखों से विरजा के सोए हुए मुंह को देखा। विरजा, वो तो धांगड़ा नहीं। बहुत दिन हुए रिकाबाड़ी से धांगड़ी लाकर घर बसा चुका है। धांगड़ा के समूह में किस साहस से वो धांगड़ी नचाने आया? कितना बड़ा अन्याय, कितनी बड़ी अनीति। लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे? सभी उसके नाम पर थूकेंगे। मुली ने विरजा को हिलाकर उठा दिया। विरजा उठ खड़ा हुआ। मुली की क्रोध भरी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर कहा,
तुझे दूसरी धांगड़ी करके ले जाऊंगा। अरे तीन तीन धांगड़ी रखने लायक मेरे पास जगह जमीन है। मेरी ये धांगड़ी ना अच्छी नहीं है, इससे काम नहीं संभलता, शराब पीकर केवल सोती रहती है। बनेगी ना मेरी दूसरी धांगड़ी?
मुली खून का घूंट पीकर रह गई। क्रोध से उसके सारे अंग थर्रा उठे। कंद घर की बेटी, लाज शर्म नहीं, नंगी देह, उन्मुक्त यौवना, कमर के नीचे तीन हाथ के मोटे कपड़े का टुकड़ा। सोचा ऊंची आवाज में चिल्लाएगी, सबों को उठाएगी, इस कुत्ते को पकड़ा देगी। उसका क्या, वो तो धांगड़ी ठहरी, उसे कोई दोष नहीं देंगे। विरजा का सब दोष होगा, उसे जाति से अलग करेंगे, भोज भात लेंगे। विरजा ने कहा,
गुस्सा ना करो मुली, अपनी धांगड़ी को भगा कर तुझे धांगड़ी करूंगा।
विरजा भागा। मुली ने किसी से कुछ नहीं कहा। विरजा को फिर कभी नहीं देखा। ठग कर भागा। सरबू से कहे उसका नाम, वो मरे प्रंजु देकर हैरान हो। बड़ा खराब आदमी, तीन लोगों को जुर्माना दे चुका, और दे जमीन बेचे, भैंसे बेचे। सरबू ने फिर से पूछा, कहोगी नहीं? वो विरजा कंद। अरे फिर वही विरजा? मुली उत्तर देने के लिए सरबू के पास नहीं रही, घर के भीतर चली आई। बालीगुड़ा पहाड़ी आंचल की कंध ललना, वो क्या जाने बाहर की दुनिया की सभ्यता, उसकी सभ्यता, अच्छे बुरे का ज्ञान सर्वथा स्वतंत्र है। संभव है मनुष्य जाति के सृष्टि काल से वो इसी भांति चली आ रही है। सभ्यता आवरण के बीच निवास करती, इसे वो नहीं जानती। मनुष्य की देह के सभी अंग समान महत्व के हैं, सभी अपना अपना कर्म करते। एक अंग में लज्जा होती, दूसरे में नहीं, ऐसी धारणा उसकी कभी नहीं बनी। लज्जा क्या है ये वो नहीं समझती। आधुनिक सभ्यता का आलोक उस पर जितना ही पड़ता, उतना ही पराधीनता और अभाव का अनुभव करती। सभ्य समाज की ढकी देह देखकर और सभ्य व्यक्तियों से डर कर, कब के न पुराने कपड़े के टुकड़े से वो छाती ढकती। लज्जा दूर करने के लिए नहीं, सभ्य समाज के इन व्यक्तियों से भयभीत होकर। भद्र व्यक्ति के चले जाने पर ये अनावश्यक वस्त्र रख देती। सामने बाप, भाई, पति, गांव के लोग, उसके मन में लज्जा का भाव नहीं जन्मा। सबको वो बड़ी बड़ी आंखों से देखती, सभी उसे उद्देश्यहीन आंखों से देखते, आंखें फिरा लेते। अभ्यस्त आंखें, नित्य दिन की आंखें, सरल, निरीह, निष्कपट, उज्ज्वल आंखें, सभ्य दुनिया। वस्त्र विहीन वो असभ्य कंध ललना, आरंभ से चली आ रही प्रथा। जिस गांव में उसका जन्म हुआ, उस गांव के सभी, उसके अपने लोग, परिवार के लोग, सभी बाप, दादे, भाई, उस गांव से कोई उससे विवाह नहीं कर सकते। अतएव लालसा भरी आंखों से कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता। पवित्र संबंध, वहां कोई अत्याचार नहीं। फिर भी उम्र होने पर कंद ललना धांगड़ी घर में सोती। सभी धांगड़ी एक जगह सोती, गांव की बूढ़ी स्त्रियां उनके पास सोती। कंद ललना का चरित्र स्वच्छ, वो असभ्य। गत जीवन की घटना को वो पति से छिपाकर नहीं रखती। संभव है जरा संकोच हो, अपने लिए नहीं, लाज के कारण नहीं, गत जीवन की व्यर्थ आशा की स्मृति के कारण। कारण वो जो कुछ करती विवाह की आशा से, पति के आगे स्वीकार करने से दुनिया के लोग जानेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई मुली की निंदा करेगा, मुली के नाम से हाट बाट में निंदा अपवाद का नगाड़ा नहीं बजेगा। सास ननद जेठानी माँ चाची बहन में से एक भी उसे घृणा की नजर से नहीं देखेगी। मुली चिरदिन मुली। भ्रष्टता को लेकर जाति से बहिष्कार नहीं होगा। बादला कंद के साथ मुली का प्रेम चरित्र दोष नहीं, विवाह के पहले का प्यार। कंध ललना पतित नहीं होती, कंध ललना का पर पुरुष के साथ प्रेम करना दोष नहीं गिना जाता, दोष पुरुष का, पुरुष सब समय दोषी। मुली का सतीत्व, विवाह के बाद जितने दिन वो सरबू कंद की पत्नी बनी रहेगी वो पति परायणा रहेगी, पर पुरुष के साथ नहीं मिलेगी। यदि वो मिले, पुनः यदि बादला कंद या विवाहित विरजा कंद के साथ गुप्त प्रणय करे, हाँ सरबू कंद की वो धांगड़ी, सरबू के प्रति उसका प्रेम निश्चय ही टूटा, गुप्त प्रेम की बात फैलेगी, वो निंदित होगी किंतु घृणा की पात्र नहीं बनेगी। इन सब के लिए उसका प्रेमी ही उत्तरदायी, कंध समाज के आगे वो दोषी रूप में खड़ा होगा। जाति में रहने के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए वो प्रंजु देगा, समाज उसे क्षमा देगा। संभव है घटना मन से भुला दी जाए, मुली पुनः सुख से संसार बसाएगी। अतीत की बातें कभी उससे कोई नहीं पूछेंगे, अतीत अतीत में ही मिल जाएगा। कारण मुली को स्वाधीनता है, तीन चार बच्चों की मां बनकर भी कंध ललना दूसरे पति को चुन सकती है। नया पति पहले पति को केवल दहेज आदि लौटा देगा और उतने से ही संबंध छूट जाएगा। बच्चे बच्चियों के संबंध में भी मुली का कोई खास दायित्व नहीं, उसने तो केवल शिशु को गर्भ में रखा और संसार में लाया, किंतु शिशु का सृष्टिकर्ता, उसका अधिकारी केवल बच्चे का पिता। कंध ललना मुक्त अविकल, अपने वस्त्रहीन अंग के समान, वो साथ ही स्वाधीन, ठीक स्वगति के समान। सरबू की स्त्री होने पर मुली मुक्त स्वाधीन, इसीलिए उसने मुक्त कंठ से निर्भय हो पति के आगे अपने अतीत की बात व्यक्त की। दुख या आनंद से नहीं, एक सहज सरल प्रश्न के उत्तर की तरह। और सरबू कितनी खुशी से मुली के पीछे पीछे घर भीतर दौड़ाया। उसने मुली को प्यार किया, मुली उसकी खूब अच्छी पत्नी। उसने आखिर दो नाम कहे, दो जुर्माने वसूल होंगे। रात बीते तो दो जुर्माने, दो जुर्माने। मुली उसकी अच्छी धांगड़ी। दूसरे दिन सवेरे सरबू ने अपने गांव वालों को खबर दी, पंचायत बैठी। गांव वालों ने समझाया कि सरबू अदा करेगा, जुर्माने के ऊपर सरबू का क्या अधिकार, वो वसूल करेगा, गांववासी भोज खाएंगे। गांव की बहू मुली के मान के लिए करिंगा गांव का बादला कंद जुर्माना देगा, उस जुर्माने से भोज कर देने से गांव वालों के पेट में शराब और मांस जाने से मुली का मान लौट आएगा। सरबू उठा, प्रथा के अनुसार उसने कंधे पर कुल्हाड़ी रखी, आगे आगे सरबू चला, पीछे पीछे ग्रामवासी। सूरज पहाड़ के ऊपर दिख रहा था। सरबू अपने गांव वालों के साथ करिंगा गांव पहुंच गया। करिंगा गांव के लोगों ने जब दूसरे गांव के लोगों को आते देखा तो घटना समझते देर न लगी, किंतु वो है कौन, यही एक प्रश्न सबों के मन में उठा। सरबू गांव में घुसा, पीछे पीछे गांववासी। सरबू किसके घर के आगे खड़ा होगा और दंड मांगेगा, सभी उत्सुक हैं। सरबू बादला कंद के घर के आगे खड़ा हुआ, बादला और उसके माँ बाप घर के आगे सड़क पर खड़े हैं। सरबू ने कुल्हाड़ी ऊपर उठाई, बादला के द्वार के खंभे में एक बार कुल्हाड़ी मारी, कुल्हाड़ी उठा ली, उसके बारामदे पर एक कुल्हाड़ी मारी, कुल्हाड़ी उठा कंधे पर रखी, मुंह नहीं खोलता। गांव के लोग बादला कंद के घर के आगे खड़े हैं। सबू ने समझा कि बादला दोषी है, किंतु बादला तो अच्छा लड़का है, आज तक विवाह नहीं हुआ, तो जिसके साथ प्रेम किया उसे स्त्री बनाकर घर क्यों नहीं लाया। बादला के माँ बाप ने उसे क्रोध भरी आंखों से देखा। सरबू ने बादला से कहा,
अरे ओ, मेरा मान दो, प्रंजू दो, नहीं तो।
बादला ने पूछा, कौन है तुम्हारी धांगड़ी? मूली। बादला के माँ बाप चौंक उठे, बादला का क्या दोष? मूली से विवाह करने को वो राजी था, जेवर गहने की मांग थी, पिता ने मना किया, इसी कारण संबंध ना हुआ। बादला को वो अपराधी बनाती है, बादला अच्छा लड़का, वो क्यों कर किसी को ठगेगा? क्यों कर वो दूसरे की लड़की के मान से बिना कारण खेलेगा? बेटे का मन जहां हो वहीं विवाह करने की प्रथा, किसी की बात में पड़कर उसने नियम तोड़ा। मूली का मान प्रंजू देने को वो बाध्य। बादला ने बाप से कहा, दे दो बाबा प्रंजू, सरबू का मान। सरबू ने जुर्माने स्वरूप 15 रुपए लिए। आनंद मन से वो और उसके गांव के लोग लौटे। उन लोगों ने गांव की लक्ष्मी का मान वापस पाया। किला जीत कर लौटे, अच्छा भोज होगा, मूली बड़ी अच्छी धांगड़ी, उसका मान वापस आ गया। गांव के लोगों की नजर में उसका मान बढ़ा। करिंगा गांव के स्त्री पुरुष अपने अपने घर लौट गए। नई बात तो कुछ नहीं, ये तो नित्य दिन का कारोबार। बादला कंद ने दूसरे की लड़की का मान लौटा दिया, आपत्ति नहीं की, एक बार में उसने दंड चुका दिया। वो हीन नहीं, अच्छा लड़का। गांव वालों की आंखों में उसका मान बढ़ा, उसने गांव का मान रखा, दंड जुर्माना दिया, करिंगा को उसने ऋणी नहीं बनाया। और दूसरी ओर इका गांव का बिरजा कंद, उसके घर भी सरबू और उसके गांव वासी दंड जुर्माना वसूल करने गए। साथ में गया सरबू का छोटा भाई सैतू। विरजा ने सरबू को टालने की कोशिश की,
कौन मुली? मैं तुम्हारी मुली को नहीं जानता, मुझे अपनी स्त्री है, मैं क्यों किसी को जुर्माना देने जाऊं?
सैतू ने विरजा की स्त्री को देखा, पास ही खड़ी हो बड़ी बड़ी आंखों से देख रही है, बगल में 3 वर्ष का बेटा, वो अपने पति की बात सोच रही है। कितना अविश्वासी, विवाह करके भी अन्य लड़कियों से मिलता है, कुत्ते का स्वभाव, फिर कहीं से एक और स्त्री लाएगा। दहेज वापस दे देने से झंझट समाप्त, वो फिर क्यों विरजा के घर रहे? 3 वर्ष का शिशु तो, विरजा उसे रखे या जो चाहे करे, इसमें उसका क्या, वो और किसी के साथ चली जाएगी। सरबू का भाई सैतू उसकी आंखों के आगे नाच उठा। पहाड़ के तले झरने के पास एक दिन उसने कनखियों से देखा था, और कुछ कहेगा ऐसा जान पड़ता था। दोनों गांव के लोग विरजा के घर के आगे जमा हो गए। विरजा के गुण से थोड़ा बहुत सभी परिचित थे, फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। सरबू और उसके गांव के लोग लौट आए, अपमान। गांव में पंचायत बैठी, तय हुआ कि सरगने की पंचायत में फरियाद होगी। सरगने का सरपंच कंद, 5 गांव का नायक मालिक, वो सरबू और उसके गांव के लोगों का मान लौटा देगा। सरपंच के आगे गांव वासी और सरबू खड़े हैं। विरजा भी आ चुका है, उसके गांव वासी भी आ चुके हैं, सरबू के साथ मूली आई। सरपंच के आदेश से उतने लोगों के आगे मूली ने हाथ बढ़ाकर दिखा दिया, यही विरजा, यही आधी रात में। मूली की बात सरपंच ने और दोनों गांव के लोगों ने सुनी, विरजा ने भी ये बात चुपचाप सुनी। उसने दोष किया है, मूली सारी बातें कह गई, फांसी देने का उपाय नहीं, सरपंच का आदेश न मानने पर भले मनुष्य की तरह जुर्माना न देने से सरबू कोर्ट की शरण लेगा। अपनी स्त्री के मान के लिए प्रंजू वसूल करने के लिए मुकदमा लड़ेगा। लाभ क्या मिलेगा? विरजा ने सरपंच के आगे सरबू को प्रंजू के रुपए गिन दिए। लोगों के आगे वो हीन सिद्ध हुआ। सरबू और उसके गांव वासी गर्व से आनंद से शोर मचाते हुए गांव लौटे। आगे आगे मुली चली। उसने अपना मान वापस पाया। गांव वासी अपना सम्मान पा गए। उस दिन गांव में बड़ा सा भोज हुआ। विरजा अपने गांव लौटा। घर खुला था। उसकी धांगड़ी भाग चुकी थी। एक दिन ऐसा घटेगा वो पहले से डर रहा था। गांव वासी भी ऐसा अनुमान कर रहे थे। खोज हुई। 7 दिनों के बाद खबर पाकर अपनी स्त्री के बारे में निश्चय किया। और इधर सेरनगुड़ा में सरबुकंद के घर सरबू के छोटे भाई सैतू ने उसे घर में स्थान दिया है। विरजा अपने गांव वासियों के साथ सेरनगुड़ा गया। अपनी स्त्री को पुकारा। सबों के आगे उसकी स्त्री ने जवाब दिया,
नहीं जाऊंगी तुम्हारे घर, तुम कुत्ते से भी गए बीते हो।
सैतू कुल्हाड़ी लेकर विरजा की तरफ दौड़ा। कहा, वो तो नहीं जाऊंगी कहती है, कैसे ले जाओगे देखूंगा। अपना दहेज वापस लोगे? पंचायत बुलाओ, हिसाब करो। ये मेरी धांगड़ी बनी, सिर्फ दहेज वापस लेने का तुम्हारा अधिकार, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। विरजा ने कुल्हाड़ी झुका ली। सैतू ने भी। आप सुन रहे थे कान्हू चरण मोहंती जी द्वारा उड़िया में लिखी कहानी प्रंजू। हिंदी अनुवाद किया प्रोफेसर कपिलेश्वर प्रसाद जी ने। वाचन था निधि बासु का। आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपके कमेंट्स या फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए किस्सा कहानी बाय निधि बासु केवल स्पॉटिफाई पर, और फॉलो बटन दबा के पॉडकास्ट फॉलो करना न भूलें।